हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप योगी और स्वागत है आपका। आज कल देखा जा रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन को बचपन से ही चश्मा लग जाता है और 50-60 वर्ष की उम्र तक दृष्टि बहुत ज्यादा क्षीण हो जाती है। तो नेत्रों से संबंधित जितनी भी नाड़ियां हैं वो नासिका रंध्र के आसपास मिलती है, जहां से मस्तिष्क, कान, गले, दांतों सभी नाड़ियों का संगम होता है। और इसी तरह से अगर वो उस केंद्र को स्वच्छ रखा जाए और उसको एकदम क्लीन किया जाए तो शक्ति प्रदान करती है और उन नाड़ियों को और उन नसों को, उन सबको एक तरह से शक्ति मिलती है और दृष्टि बढ़ती है। पुराने ऋषि मुनियों ने इस आंख, नाक, कान, गला, मस्तिष्क आदि जैसी सभी चीजों पे एक बहुत ही यौगिक क्रियाओं का विकास किया है। इसमें हम आपसे जिक्र करेंगे कुछ आंखों से रिलेटेड उनके इलाज के बारे में। और यकीन मानिए कि अगर आप इन सभी चीजों का प्रयोग करके सही तरीके से कर लिया जाए तो कभी आंख खराब नहीं होंगी, कभी कम नहीं दिखेगा, एकदम उज्जवल उच्च दृष्टि रहेगी, अच्छी दृष्टि रहेगी और स्वस्थ रहेंगी आपकी सारी चीजें। कभी सर में दर्द नहीं होगा, आंखों से अन्य बीमारियां भी होने लगती है। तो आंख लगभग गोलाकार होती है और आंख के गोले की सबसे बाहरी सख्त सतह को स्क्लेरोटिक कहते हैं। यह मजबूत, सफेद और अपारदर्शक होती है। इसका विशेष कार्य आंख के आंतरिक कोमल भागों को किसी प्रकार की चोट से सुरक्षित रखना है। आंख के गोले के मध्य भाग की परत, जो बेसिकली कृष्ण पटल कहते हैं, जिसको कोरोइड या पक्षा भी रंगे सिलेरिली मसल और आयरिस की बनी होती है। इसके अग्र भाग को आयरिस कहते हैं। यह रंगीन होती है और आंख का अनोखा रंग प्रदर्शित करती है। इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश आंख के अंदर तक पहुंचता है। इसको प्यूपिल कहते हैं। अंधेरे में इस छिद्र का व्यास सेंटीमीटर के 3/4 के बराबर हो जाता है और चमकदार प्रकाश में यह लगभग सुई की नोक के बराबर होता है। आयरिस के ऊपरी भाग की ओर स्केलेरा की अपेक्षा अधिक वक्र पारदर्शक भाग को कॉर्निया कहते हैं। आंख के गोले की सबसे अंदर की परत जो प्रतिबिंब लेती है बहुत कोमल व सूक्ष्म ग्राही होती है, इसे रेटिना कहते हैं। इसमें दो प्रकार के ग्राही, रीड्स और कॉन्स होते हैं। ये सब छोटी छोटी संरचनाएं दिमाग से एक तंत्रिका द्वारा जुड़ी रहती है जिसे दृक तंत्रिका कहते हैं। रेटिना में दो बिंदु होते हैं, एक अंध बिंदु जिसमें प्रकाशीय संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती, दूसरा पीत बिंदु जो रेटिना का सबसे अधिक संवेदनशील बिंदु है। यहां पर ही प्रकाशीय संवेदनशील कोशिकाओं का सबसे अधिक संकेंद्रण होता है। आयरिस व कॉर्निया के बीच का भाग नेत्रोद अर्थात एक्वोस ह्यूमर नामक द्रव्य से भरा होता है तथा परतों का भीतरी भाग जेली के समान द्रव्य से भरा होता है जिसे काचाब द्रव्य विट्रियोस ह्यूमर व लेंस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? प्रकाश कॉर्निया, नेत्रोद, नेत्र लेंस व कचाब द्रव्य से बने हुए प्रकाश तंत्र जो एक अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट लेंस की तरह कार्य करता है में से गुजरता है और रेटिना वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उद्घाटन अर्थात एक्सपोजर का समय पलक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेटिना पर लगभग अच्छा प्रतिबिंब बनाने के लिए पक्षा भीगी रंगो अर्थात सिलेरिली मसल्स द्वारा प्यूपिल की त्रिज्या का नियंत्रण होता है। इसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी या उसकी पावर बदल जाती है। यह क्रिया नेत्र की समंजन क्षमता है। स्थिरता की अवस्था में आंख दूर की वस्तुओं को फोकस करती है। समंजन क्षमता से आंख लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को फोकस कर जाती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचते हैं, जहां इनको फिक्स किया जाता है। आंख एक कैमरे की तरह कार्य करती है, लेकिन इसकी अनुरूपता टेलीविजन कैमरे से और अधिक है, जिसमें किसी भी समय पर देखे गए प्रतिबिंबों के सिग्नल लगातार एक केबल द्वारा उसी प्रकार पारंगत होते हैं जिस प्रकार आंख में प्रकाश तंत्रिका द्वारा होता है। मायोपिया, जिसको आप निकट दृष्टि भी कहते हैं, अर्थात मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया में दृष्टि निकट बिंदु अर्थात 33 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर या पास की अच्छी होती है, जबकि दूर की वस्तुओं के लिए केंद्रीय स्थिरता कठिन हो जाती है और 6 मीटर या अधिक दूरी की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। आंख के गोले की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आंख की दूर की वस्तुएं ठीक तरह फोकस नहीं कर पाती। माइनस लेंस के प्रयोग से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका उपचार आसान है। आराम या तनाव से बचना प्रसामान्य दृष्टि में लाने में सहायक है। बहुत लोग जिनकी निकट दृष्टि है घूरने या तनाव या प्रयास से देखने में विचार नहीं करते। वास्तव में निकट दृष्टि तनाव के कारण होती है। मायोपिया आंख के लिए कम रोशनी में अखबार या बारीक छपाई पढ़ना हितकर है। हरे रंग की वस्तुएं या सब्जा पार देखना, मनोहर दृष्टि की कल्पना करना एवं विश्राम दृष्टि के लगभग सभी दोषों में लाभदायक है। विशेषकर मन का विश्राम दिमाग व शरीर की सभी तंत्रिकाओं के लिए लाभदायक है। इस कारण विश्राम देने का तरीका जानना बहुत आवश्यक है। आंख के लगभग सभी दोष तनाव के कारण होते हैं और विश्राम के बिना ठीक नहीं हो सकते। मायोपिया आंख की दूर की वस्तु देखते समय निकट की वस्तु पर फोकस करती है। निकट दृष्टि के रोगी के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। पलकों को ठीक स्थान पर रखना, पलकें ठीक तरह झपकना व आंखों पर हथेली रखना, फूलों आकर्षक कैलेंडरों दिव्य चित्रों पर केंद्रीय स्थिरता, बारीक छपाई आंख के पास लाकर पढ़ना, कल्पना का अभ्यास, दूर की वस्तु देखने का प्रयास न करना, शारीरिक कमजोरी वाले रोगी को पौष्टिक भोजन खाना लाभदायक रहेगा। स्कूलों और कॉलेजों में मायोपिया बहुत अधिक पाया जाता है। चश्मे के प्रयोग से इसे रोका नहीं जा सकता। वास्तव में बहुत अधिक समंजन के कारण गोले की लंबाई बढ़ जाती है। बच्चे जब बहुत अधिक नजदीकी काम करने के पश्चात एकदम दूर की वस्तु देखने का प्रयास करते हैं तो इससे वह लंबाई और अधिक बढ़ जाया करती है। यही कारण है कि मायोपिया शहरों में गांवों की अपेक्षा बहुत अधिक पाया जाता है। शहरों में बच्चों को बहुत अधिक समय तक कमरे में ही रहना पड़ता है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत से अनिच्छित कार्य और विषय पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए शहरों में स्कूल मायोपिया उत्पन्न करने के क्षेत्र हैं। गांवों में अवस्था बहुत भिन्न है। मानसिक तनाव कम होता है। बच्चों में मायोपिया रोकने का निम्नलिखित प्रयास काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। नित्य प्रति सूत्र नीति, जल क्रिया, दूध पान, गज करनी के साथ आकाशी मुद्रा करें। इस अभ्यास से बच्चे की मानसिक शक्ति अधिक हो जाती है, जिससे याददाश्त व कल्पना शक्ति बढ़ जाती है तथा निकट दृष्टि ठीक हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दीर्घ दृष्टि या लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का उल्टा है। इसमें प्रकाश अक्ष मायोपिया की अपेक्षा, जिसमें यह लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया जन्मजात होता है, परंतु कई बार देखने में आया है कि यह रोग 10, 20, 30, 40 या अधिक वर्ष की आयु में हो जाता है। कुछ व्यक्ति बारीक छपाई पढ़ने के शुरू में तो दृष्टि सामान्य पाते हैं, लेकिन कुछ देर पश्चात आंख में हाइपरमेट्रिया उत्पन्न हो जाता है। जब प्रसामान्य आंख अज्ञात भाषा पढ़ने की कोशिश करती है तो हाइपरमेट्रिया उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी बहुत अधिक चिंता या निरंतर श्रम करने से भी हाइपरमेट्रिया हो जाती है। आंख के लगभग 80% रोग हाइपरमेट्रोपिया के कारण होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को रोकना का इलाज मायोपिया की अपेक्षा सरल है। शुरुआत में इलाज आसानी से हो सकता है। प्लस लेंस से आप काम तो करने लग जाते हैं, लेकिन चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है और किसी किसी का बड़ी तेजी से बढ़ता है। पलकें ठीक प्रकार से झपकना, स्थान बदलना तथा आराम व विश्राम के साथ साथ सूत्र नीति, जल क्रिया, गज करनी आदि अधिक लाभदायक है। सिर पर बोझा उठाना तथा अधिक परिश्रम करना वर्जित है। एस्टिगमेटिज्म के साथ हमेशा मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसलिए इसे मायोपिक एस्टिगमेटिज्म या हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म कहते हैं। इस रोग में आंख के गोले का झुकाव लंबाई व चौड़ाई वाली दिशाओं में बराबर नहीं होता। ऐसे रोगी को चार्ट पर लिखे अक्षरों की आकृति बिगड़ी हुई दिखाई देती है। सीधी पंक्तियां लंबी पंक्तियों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रतीत होती है और उल्टा भी हो सकता है। एस्टिगमेटिक आंख वाले व्यक्ति की आंखें पढ़ने से बहुत जल्दी थक जाती है तथा सिर व आंखों में दर्द होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा पलके व आंखों के गील गोले को ऊपर व थोड़ी नीचे की ओर रखता है तो यह इस बात का साक्षी है कि उसे एस्टिगमेटिज्म है। इस रोग का कारण तनाव। मनुष्य जितना अधिक प्रयास देखने में व आंख की पुतली को ऊपर की ओर करने में करता है उतना ही अधिक एस्टिगमेटिज्म होता है। इसका उपचार विश्राम, बारीक छपाई पढ़ना उपयोगी है। नासिका द्वारा घृत, सूत्र नेति, दूध धार, गज करनी आदि योग क्रियाओं के अभ्यास से लाभ हो सकता है। प्रेस बायोपिया। सामान्य आंख वाले लोग 40 वर्ष या अधिक की आयु में पढ़ने में विशेषतः रात्रि के समय कष्ट महसूस करने लगते हैं। चाहे दूर की दृष्टि ठीक ही क्यों न हो, उन्हें पढ़ते समय चश्मे की जरूरत पड़ती है। वृद्ध आयु में ऐसी अवस्था को प्रेसबायोपिया कहा जाता है। अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि वृद्ध आयु में आंखों के लेंस सख्त हो जाने के कारण ऐसा होता है। प्राय समंजन क्षमता में नियमित रूप से कमी आती जाती है। आयु और प्रेसबायोपिया कितना है, इनके चार्ट बनाए गए हैं। उनसे पता चलता है कि बिना दृष्टि की जांच किए आयु से ही पता लग सकता है प्रेसबायोपिया कितनी मात्रा में है। दूसरी ओर प्रेसबायोपिया की मात्रा से आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 40 वर्ष की आयु में +1 50 और +2 60 और +3 अधिकतर प्रेसबायोपिया मायोपिया आंख में हाइपरमेट्रोपिक आंख की अपेक्षा देर से आता है। वास्तविकता यह है कि प्रेसबायोपिया तनाव के कारण होता है, जिससे निकट दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। यह तनाव जिसके कारण प्रेसबायोपिया हो जाता है शरीर की सभी तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है और दुखमय अवस्था बन जाती है। किसी किसी व्यक्ति में यह स्थिति निरंतर बढ़ती जाती है। चश्मे से पढ़ा तो जा सकता है, परंतु कष्ट व पीड़ा कम नहीं होती। किसी एक का तो नंबर बढ़ता ही जाता है, फिर अंतिम अवस्था ऐसी आती है कि कोई चश्मा भी नहीं लग सकता। बड़ी आयु में दृष्टि सेहत तथा यकृत की कार्य क्षमता के साथ बदलती है, इसलिए वृद्ध आयु में चिकनाई, मिठाई, धूम्रपान, चाय आदि से जितना हो सके बचते रहना चाहिए। प्रेस बायोपिया का इलाज सूत्र नेति, दूध धार, दूध पान, गज करनी, जीवन तत्व, सर्वांगासन, अतः हरी सब्जियों का सदुपयोग करना चाहिए। एम्बलोपिया, एम्बलोपिया का अर्थ है अंधेपन की अवस्था। इसमें दृष्टि बहुत क्षीण हो जाती है। इस रोग में चश्मा भी काम नहीं करता। केंद्रीय स्थिरता खत्म हो जाती है तथा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में अच्छी दृष्टि एम्बलोपिया के आक्रमण से बदलती रहती है। यह रोग अधिकतर ऐंची आंख में होता है। एम्बलोपिया का इलाज एलोपैथी में नहीं है। अपवर्तन के अन्य दोषों की भांति यह भी एक कार्य संबंधी दोष है। तनाव के हटने व आंखों को व्यायाम देने से दृष्टि जल्दी सुधर सकती है। अच्छी आंख को बंद कर केंद्रीय स्थिरता का अभ्यास अच्छा रहेगा। घृत नेति, सूत्र नेति, जल क्रिया, सिर पर बादाम रोगन का प्रयोग एवं प्रातः व साय आकाशी मुद्रा का अभ्यास करने से एम्बलोपिया में सुधार हो जाता है। बहते हुए कण, फ्लोटिंग स्टेट्स, डॉक्टरी भाषा में इन्हें मस्केल वोलिटिनेट्स या उड़ती हुई मधुमक्खियां कहते हैं। आंखों के सामने कुछ काला काला घूमता दिखाई देता है। यदि ध्यान से देखने की कोशिश करें तो वह दूर जाते दिखाई देते हैं। इनका कोई भी आकार हो सकता है। रोशनी में या कभी कभी आंख बंद करने पर भी यह दिखाई देते हैं। अधिकतर इन कणों की बड़ी परेशानी महसूस होती है। इनका कारण मानसिक तनाव है। यह तनाव अपवर्तन के कारणों में जो तनाव होता है उससे भिन्न है। केंद्रीय स्थिरता ऐसी अवस्था में प्राय खत्म हो जाती है। जब तनाव दूर हो जाए तभी इसमें आराम आ जाता है। हथेली रखना तथा केंद्रीय स्थिरीकरण का अभ्यास लाभदायक है। दो बातें जरूरी है। कभी भी यह जानने की कोशिश न करें कि उड़ती हुई मक्खियां हैं या नहीं। प्राय रोगी है जानने के लिए कितना सुधार हुआ है ऐसा प्रयास करता है। यही कारण हानिकारक है। जब भी उड़ती हुई मक्खियां प्रतीत हों तो दृष्टि दूसरी तरफ बदल ले या अंधेरे की तरफ देखे। यदि आंख में निकट या दीर्घ दृष्टि दोष हो तो नासिका द्वारा दूध व बादाम रोगन सेवन करें तथा आंखों को विश्राम दें। षणमुखी मुद्रा द्वारा शीघ्र लाभ उठाया जा सकता है। रात्रि में अंधापन व दिन में अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस एंड डे ब्लाइंडनेस। यदि रात्रि का अंधापन जन्म से ही हो तो ठीक नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में दृष्टि दिन में अच्छी होती है तथा रेटिना में कोई दोष नहीं होता। तनाव व रेटिनल दोषों के कारण यदि रात में अंधापन आने लगे तो निम्नलिखित उपचार किया जा सकता है। कब्ज की शिकायत में बादाम रोगन इत्यादि लें। पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, फल, संतरा, पपीता, दूध, मक्खन आदि का प्रयोग उपयोगी रहेगा। जाफरानी घृत लाभदायक है। दूध धार व दूध पान किया जा सकता है। सिर पर बादाम रोगन लगाना अच्छा रहेगा। कम रोशनी में चलना व घूरने की कोशिश न करना हितकर है। यदि गर्मी व तेज रोशनी के कारण दिन में अंधापन हो तो रोगी को बहुत अधिक तनाव महसूस होता है। चौंधियाना वाला प्रकाश दिखता है तथा रोगी ठीक प्रकार से नहीं देख पाता। सिर व आंखों पर ठंडी वस्तुओं का प्रयोग लाभदायक रहेगा। नहाते समय सिर पर दूध, दही व तेल सरसों का प्रयोग करें और नासिका द्वारा सौंफ डालकर उबाला हुआ दूध 250 ग्राम से आधा किलो तक पिए। अत्यधिक लाभ होगा। काचाब द्रव्य का बहना। इस रोग में सदैव अधिक मानसिक तनाव रहता है। किसी किसी स्थिति में आंखों में यह रोग आता है और चला जाता है और रोगी को यह महसूस होता है कि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन या बादल नीचे की ओर आ रहे हैं और सारा वायुमंडल धुंधला प्रतीत होता है। अधिकतर ऐसी अवस्था में दिमाग की नसें बहुत अधिक तनाव में आ जाती है। यह रोग पुरानी कब्ज से भी हो सकता है। दिमाग की कोशिकाओं में कुछ विषैला मल इकट्ठा हो जाने से या कुछ अधिक सोच विचार से यह रोग हो जाता है। इसका इलाज करेला आदि मल रेचक पदार्थ सेवन करते हैं। प्रातः सूर्य की धूप में आंखें खोल पांव पानी में डालकर बैठे जबकि सूर्य की किरणें सुहावने लगती। विश्वास और विश्राम विशेषतः आंखों पर हथेली रखना अर्थात पॉमिंग करें। नासिका द्वारा घी व सिर पर बादाम रोगन प्रयोग करें। रेटिनल रोगों में भी कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कब्ज न होने दें, नाक में जाफरानी घृत डालें तथा शुद्ध भोजन का सेवन करें। सूर्य की धूप में बैठें, हस्त पादांगुष्ठासन व सर्वांगासन अपनाएं व नासिका द्वारा जल का दूध पान करें। रंग के प्रति अंधापन, कुछ लोग नीले व लाल रंग में या अन्य रंगों में अंतर नहीं बता सकते। बहुत से डॉक्टरों का कहना है कि यह रोग रेटिना द्रक तंत्रिका व दिमाग से संबंधित है। उनका ऐसा विश्वास है कि यह रेटिना में परिवर्तन आने से होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि इसका उपचार रेटिना के बदले बिना भी हो जाता है। तो सामान्य दृष्टि की अवस्था में भी यह रोग ही हो सकता है। बहुत से लोगों में यह दोष मानसिक तनाव से उत्पन्न रेटिनल रोग के परिणाम स्वरूप आ जाता है। ऐसी अवस्था में उपचार तब तक नहीं हो सकता जब तक रेटिना ठीक नहीं हो जाता। इस रोग से ग्रस्त कुछ लोग तेज रोशनी में अच्छा देख सकते हैं, जबकि कुछ एक तेज रोशनी में कष्ट महसूस करते हैं। ऐसे रोगियों के लिए सूर्य की धूप सेवन करना, नासिका द्वारा जाफरानी घृत, आंखों पर हथेली रखना, केंद्रीय स्थिरीकरण का अभ्यास आदि लाभदायक है। मोतियाबिंद कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में प्यूपिल का रंग काले से हल्के भूरे या अन्य किसी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण आंख के फोकसिंग लेंस की अपारदर्शिता है। रोशनी की किरणें आंख में प्रवेश करने के पश्चात नेत्र लेंस द्वारा पिछले भाग में फोकस हो जाती है। जब लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो अलग अलग वस्तुओं की किरणें लेंस में से नहीं जा सकती, इसलिए दृष्टि क्षीण हो जाती है तथा रोगी लगभग अंधा हो जाता है। मोतियाबिंद के अनेक कारण हैं, वे उनके विषय में अनेक मत हैं। लेंस पारदर्शक परतों से बना है, यदि इन परतों पर या आंख के गोले पर दबाव डाला जाए तो लेंस में अपारदर्शकता आ जाती है। मोतियाबिंद का मुख्य कारण आंख के गोले पर दबाव है। आंख के बाहर की मांसपेशियां सिकुड़ने से आंख के गोले पर दबाव आ जाता है। तो सामान्य आंख में मोतियाबिंद अस्पष्ट याददाश्त या दृश्य द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि अस्पष्टता से आंख के बाहर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से वे सिकुड़ जाती है। लेंस में लगभग सभी प्रकार की अपारदर्शकता दबाव से आ सकती है। प्यूपिल के पीछे का भाग दबाव में भिन्नता के कारण रंगीन हो जाता है। आंख में या मानसिक तनाव जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है, उस तनाव से जिससे ग्लेकोमा होता है भिन्न है। आंख में अलग अलग दोष अलग अलग प्रकार के तनाव से होते हैं। मोतियाबिंद का स्पष्ट लक्षण लेंस की अपारदर्शकता है। प्यूपिल भूरे या सफेद रंग का हो जाता है तथा रेटिनोस्कोप या ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से देखने पर प्यूपिल में काली तथा दृष्टि छाया दृष्टिगोचर होती है। पक्के मोतियाबिंद में ऑपरेशन कराना पड़ता है, कच्चे मोतियाबिंद की अवस्था में इंतजार करनी पड़ती है। यदि मोतियाबिंद अधिक तनाव के कारण हुआ है, जैसे अधिक निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि की अवस्था में होता है, तो शुरुआत में विश्राम लाभदायक है। करेले का पानी उपयोगी है क्योंकि यह कब्ज हटाता है तथा जिगर का जो कार्य में उत्तेजित करता है। किसी एक आंख में प्यूपिल सफेद तथा अपारदर्शक प्रतीत होता है, परंतु रेटिनोस्कोप से विदित होता है कि कुछ भी अपारदर्शकता नहीं और प्यूपिल में काफी लाली होती है। ऐसी अवस्था में विश्राम आवश्यक है। ऑपरेशन की इंतजार ही केवल उपचार नहीं समझना चाहिए। यदि रोशनी बिल्कुल भी महसूस न होती हो तो उपचार या ऑपरेशन कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य की धूप में अधिक देर तक बैठना वर्जित है। आंखों को घुमाना व आंखों पर हथेली रखना लाभदायक है। हरी घास पर चलना व हरी सब्जियां लेना सर्वोत्तम रहेगा। तली भुनी चीजें व मिर्च मसाले वर्जित है। मोतियाबिंद से बचने के लिए सूत्र नीति, जल क्रिया और नासिका द्वारा दूध व बादाम रोगन सेवन करें। ग्लेकोमा। ग्लेकोमा आंखों का एक भयानक रोग है। कई एक बार आंख का गोला बहुत सख्त हो जाता है। यह इस बात का सबसे अधिक स्पष्ट लक्षण है कि आंखों में ग्लेकोमा है। दृष्टि क्षेत्र नाक की ओर से कम हो जाती है और पिपल प्राय बड़ा हो जाता है। कॉर्निया पर सामान्य आंख की अपेक्षा कम सूक्ष्म ग्राही हो जाता है। ग्लेकोमा अधिकतर बड़ी आयु में होता है। यह रोग एक दम भी आ जाता है। उदाहरणार्थ पर सामान्य आंख व दृष्टि वाला एक व्यक्ति रात्रि में आराम से सोया, अचानक आधी रात के समय वह बहुत तेज दर्द होने के कारण उठा और पाया कि वह बिल्कुल अंधा हो गया है तथा दोनों आंखों में ग्लेकोमा हो गया है। किसी एक की शुरुआत में दृष्टि थोड़ी छीन हो जाती है और धीरे धीरे लगभग एक वर्ष पश्चात पूरी तरह अंधापन आ जाता है। ग्लेकोमा के लक्षण कारण व इलाज अनेक हैं। आयरिस एंगल, आंख का वह भाग जो आयरिस से बाहर की ओर है, में कमी आ जाना ग्लेकोमा का कारण है। जब नया टिश्यू जो स्कार टिश्यू की तरह होता है आयरिस एंगल में बन जाने से आंख के गोले के रस आदि का ठीक वितरण नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन में आयरिस का कुछ भाग हटा देने से लाभ हो जाता है, परंतु ग्लेकोमा के सभी व्यक्तियों में ऐसा देखने में नहीं आता। ग्लेकोमा पिपल बढ़ जाने से भी हो सकता है, लेकिन यह पाया गया है कि जितने व्यक्तियों में बढ़ा हुआ था उतने में ही यह सिकुड़ा हुआ था। अभी तक एलोपैथी में ग्लेकोमा के उपचार के प्रयास निराशाजनक सिद्ध हुए। दृष्टि में क्षीणता, दर्द व तनाव, सिर दर्द, रोशनी के चारों ओर हेलो और पीपल बढ़ा हुआ, बहुत अधिक खिंचाव, यह सब या कुछ ग्लेकोमा के रोग में पाए जाते हैं। लेकिन अधिक तनाव आमतौर पर हमेशा होता है। खिंचाव का कारण तनाव है। तनाव खिंचाव को दो तरीकों से बढ़ाता है। किसी अवस्था में अधिक मात्रा में उत्पन्न नेत्रोध अर्थात एक्वस और ह्यूमर स्केलम केनाल में न जा सकने के कारण खिंचाव बढ़ जाता है। यह अधिकतर डील डोल वाले व्यक्ति के साथ होता है। नासिका में घी, सूखा भोजन व विश्राम का अभ्यास लाभदायक है। दूसरी प्रकार के ग्लेकोमा की अवस्था में मांसपेशियां सख्त हो जाती है तथा सिकुड़ जाती है, इससे खिंचाव बढ़ जाता है। यह अधिकतर सूखे पतले लोगों के साथ होता है। नासिका द्वारा दूध, बादाम रोगन व मल रेचन भोजन उपयोगी है। ऐंचापन, स्क्विंट। हमारी दो आंखें तथा देखने की क्रिया में दो फोटो बनने चाहिए। यह दोनों मन द्वारा एक में परिणत हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि दोनों आंखें इकट्ठे ठीक एक समय पर कार्य करें। यदि ऐसा न हो तो आंख में ऐंचापन होता है। अपसारी डाइवर्जेंट ऐंचेपन में आंख बाहर की ओर या आ जाती है और अभिसारी ऐंचेपन में आंख अंदर की ओर चली जाती है। लंब रूप ऐंचेपन में आंख बहुत ऊंची या बहुत नीची प्रतीत होती है। ऐंची आंख वाले कुछ लोगों को एक वस्तु के स्थान पर दो दिखाई देती है। अधिकतर ऐंची आंख की दृष्टि पर सामान्य नहीं रहती तथा चश्मे से भी ठीक नहीं दिखाई देता। ऐसी अवस्था में एम्ब्लोपिया कहते हैं। ऐंचेपन का कारण मानसिक तनाव है। अलग अलग तरह के ऐंचेपन के तनाव भी अलग अलग है। ऐंचापन योग अभ्यास से ठीक हो सकता है। ऑपरेशन से यह आवश्यक नहीं कि ऐंची आंख की दृष्टि ठीक हो जाए, इसलिए विश्राम द्वारा उपचार का तरीका अच्छा रहेगा। अपसारी ऐंचेपन में नाक की नोक पर देखना तथा बारीक छपाई आंख के नजदीक लाकर पढ़ना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ऐंचेपन में प्रसामान्य दृष्टि के लाने के लिए केंद्रीय स्थिरीकरण, हथेली रखना, मानसिक एकाग्रता का अभ्यास लाभदायक है। नयनामृत का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। सूत्र नीति, जल क्रिया, दूध पान, गजकरणी, सर्वांगासन व आकाशीय मुद्रा करने से अवश्य लाभ होगा। चश्मे का प्रभाव। अधिकतर चश्मा लगाने से दर्द और बेचैनी अधिक हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं और कभी कभी तो किसी एक को अंधापन तक आ जाता है। चश्मा आंखों पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। प्राय देखा गया है कि कुछ समय तक चश्मा प्रयोग करने के पश्चात वह भी अच्छी तरह नहीं दिखता जो आंखें पहले ठीक तरह देख सकती थी। बच्चों व खिलाड़ियों को तथा प्रतिदिन बसों में सफर करने वालों को तो चश्मा लगाने से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चश्मे से चेहरा भद्दा दिखने लगता है तथा चश्मा उतारने पर आंखें बहुत अस्वाभाविक मंद व कांतिहीन दिखती। चश्मे को मिट्टी धुएं पसीने से बचाने में भी सावधानी रखनी पड़ती। रंगीन चश्मे से आंखें रोशनी की ओर अधिक सूक्ष्म ग्राही हो जाती। जो लोग बाईफोकल चश्मा प्रयोग करते हैं उन्हें दूर व निकट की वस्तुएं देखने के लिए बार बार आंखें क्रमशः ऊपर नीचे करनी पड़ती है। इससे आंखों पर और अधिक दबाव पड़ता है तथा कुछ समय पश्चात दृष्टि और अधिक क्षीण हो जाती है। सिरदर्द, अधिकतर सिर दर्द पढ़ते लिखते सोते मोटर कार चलाते चलते फिरते समय आंख का गलत प्रयोग करने से होता है। मुख्यतः मानसिक व आंखों का तनाव ही कारण होता है। सिर दर्द वाले रोगी के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे आंखों पर हथेली रखना, बारीक छपाई पढ़ना उपयोगी है। यदि सिर दर्द गर्मी के कारण हो तो ठंडे पानी से स्नान करें और कुछ ठंडा पिए। थोड़ी थकावट महसूस होने पर गर्म दूध लें व आंखों पर हथेली रखें। यदि सिर दर्द ठंड के कारण हो तो गर्म वस्तु का सदुपयोग करें। यदि किसी बीमारी के पश्चात सिर दर्द रहता हो तथा खुश्की महसूस होती तो नाक में घी डाले हुए नासिका में दूध पान करें। अब यह देखते हैं कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा हम कैसे अपने आप को और आंखों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपको बतानी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आंखों की नेति क्रिया का विवरण दे सकते हैं। जब हम देखते हैं कि मस्तिष्क से लेकर कंठ तक जितनी नस नाड़ियां हैं उन सब की शुद्धता हेतु जब नेति नासिका में डालकर मुंह से निकाली जाती है तो उस समय मुख की आकृति किस प्रकार होती है, ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है। नीचे से गर्मी के परमाणु मस्तिष्क की ओर उठकर काग, जिसको छोटी जीवा कहते हैं, को नीचे लटका देते हैं। इस काग की मल निवृत्ति के लिए और कंठ की ग्रंथि को शुद्ध करने के लिए नेति क्रिया की जाती है। इस प्रकार कंधों के ऊपर मस्तिष्क तक के समस्त रोगों की निवृत्ति करने में तथा आयु भर समस्त नस नाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नेति सफल सिद्ध हुई है। यदि ध्यान से आप एक ध्यान देखा जाए और ध्यान से पढ़ा जाए या समझा जाए तो ये आपको ज्ञात होगा कि जो गले के समीप जो होता है या जहां से नेति घूमकर आती है छोटे जीवा से, तो यह एक ऐसा स्थान है जहां कंठ से लेकर मस्तिष्क तक की सभी नाड़ियां मिलती है। जब हम नासिका से श्वास लेते हैं तो उसमें वायु से अमृत रस, जो कि चंद्रमा के कारण हर समय वायुमंडल में उपस्थित रहता है, श्वास से अंदर आकर सब नाड़ियों को शक्तिशाली बनाता है। इस रस को जो कि शीतल और मधुर होता है, साधक जीवों को तालू से लगाकर उसको उल्टा कर एक क्षण में ही अनुभव कर सकता है। जब तक यह रस अपनी ठीक अवस्था में रहता है तब तक कंठ से लेकर मस्तिष्क तक कोई रोग निकट नहीं आता, किंतु जब आमाशय या हृदय से उठकर गर्मी खुश्की के परमाणु मस्तिष्क में जाते हैं तो यही रस या नजला या रेशा मस्तिष्क की नसों में रुक जाने के कारण स्मरण शक्ति निर्बल हो जाती है और सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि इसका प्रभाव नेत्रों की ओर हो जाए तो नेत्र ज्योति क्षीण होने लगती और अंत में अंधापन आ जाता है। कानों की ओर जाने से बहरापन होता है और दांतों की ओर जाने से दांत हिलने लग जाते हैं। गले में रुक जाने से टॉन्सिल, खांसी, दमा, कंठ से होकर अमावस्या में गिरने से अनेक प्रकार के दूसरे रोग और हंजीरे कंठमाला हो जाता है। हंजीरों के साथ ज्वर रहने लगता है और हंजीरे बढ़ते बढ़ते पेट तक फैल जाते हैं। ऐसे भयंकर रोगों को भी नेति से दूर किया और करवाया जा सकता है। नाड़ियों में एक विशेषता यह भी है कि नेति उन पर अपना दबाव डालती है तो वे सारा मल इस प्रकार छोड़ती हैं जैसे स्पंज दबाने से पानी छोड़ता है। नेति को जब नासिका में डाला जाता है तो सर्वप्रथम वह नासा नाड़ी से टकराती है जिससे किसी किसी को छींके प्रारंभ हो जाती और साथ साथ इनका मल भी बाहर निकलने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नेति बढ़ते हुए कफ आदि को रोकती है। यदि मस्तिष्क का यह मल शुद्ध न किया जाए तो यह बढ़कर अनेक रोगों का कारण बन जाता है। अतः जुकाम, खांसी, दमा, अंजीरे, नेत्र, नासिका, कर्ण, दंत, कंठ और सिर से संबंधित रोगों अर्थात और साथ में तपेदिक या टीबी आदि को दूर करने के लिए नेति जादू का प्रभाव डालती है। नेति नासा नाड़ी को शुद्ध करने करके मस्तिष्क की सभी नाड़ियों व नसों को शुद्ध करने का एक सुंदर साधन है। नेति का प्रभाव किन किन नाड़ियों पर होता है इसको समझ लीजिए। जायगोमैटिक नर्व हनु नाड़ी, इसका संबंध ठोड़ी से होता है। कान और ठोड़ी के मध्य भाग को हनु कहते हैं, समझ गए नहीं? कान और ठोड़ी के मध्य भाग को हनु कहते हैं। पोस्टीरियर डेंटल नर्व पाश्चात्य दंत नाड़ी, दांतों को पिछली नाड़ी जिसका संबंध दांतों के पिछले भाग से। पल्पेब्रल नर्व वर्तन नाड़ी जिसका संबंध नेत्रों की पलकों से है। एंटी सब एल्वियोलर अर्ध हनु नाड़ी जिसका संबंध हनु के ऊपरी भाग से है। लुक्सिनेटर नर्व कपोल नाड़ी जिसका संबंध कंठ से है। लेबियल नर्व ओष्ठ नाड़ी जिसका संबंध ओठों से है। डेंटल नर्व चुंबक नाड़ी जिसका संबंध थोड़ी से है। इसी प्रकार पिछले भाग में भी कुछ नाड़ियां जैसे फेशियल नर्व मुख की नाड़ी जिसका संबंध सारे मुख से। ओरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व शंख कर्ण नाड़ी सुनने से संबंध रखने वाली नाड़ी। इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व अधो हनु नाड़ी हनु से निचले भाग से संबंध रखने वाली है। हायोग्लोसस नर्व हनु जिह्वा नाड़ी हनु व जिह्वा से संबंधित है। माइलोफाइट नर्व हनु कंठ नाड़ी हनु व कंठ से संबंधित है। इन सभी नाड़ियों के शुद्ध होने पर मस्तिष्क भली भांति अपना कार्य करता है। इन नाड़ियों में दोष आ जाए तो मस्तिष्क अपना कार्य भली प्रकार नहीं कर सकता जिससे उसके केंद्र अपना कार्य छोड़ देते हैं और ऐसा होने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार छोटा मस्तिष्क भी अपना कार्य नहीं कर सकता। सेतु हावन नाड़ी कागगल ग्रंथि आदि और कंधों के ऊपर के दूसरे भागों के रोग भी नेति करने से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। सिर नासिका व नेत्र आदि सभी भाग नजले से बचकर अपने अपने कार्यों को उचित रूप से करते रहते हैं। नेति क्रिया की आवश्यकता क्या है? इस शरीर में श्वास के आने जाने के मार्ग में जहां से वह आरंभ होता है और जहां पर जाकर समाप्त होता है ईश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार की नस नाड़ियों के महत्वपूर्ण स्थान निर्मित किए जिनसे स्पर्श करती हुई वायु फेफड़ों में आती जाती है। सब इस बात को जानते हैं कि श्वासों का आना जाना ही मनुष्य का जीवन है। इस विषय में समस्त योगियों का भी यही निर्णय है कि श्वास ठीक प्रकार से आवे। श्वासों में जीवन देने वाली शक्ति की मात्रा किस प्रकार अधिक हो और किस प्रकार मनुष्य इन श्वासों से अमृत रस प्राप्त करे यह ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य थोड़े ही अभ्यास से सदा के लिए स्वस्थ रह सकता है। ऐसे मनुष्य के निकट रोग कभी नहीं आ सकते। इन सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए योगियों में यह निश्चय किया है कि प्रारंभ से ही शरीर का शक्तिशाली होना आवश्यक है जिससे कोई भी रोग उस पर अपना प्रभाव न डाल सके। यदि रोग का आक्रमण हो भी जाए तो उसे शीघ्र ही दूर कर सके। अर्थात योगियों ने अपने अभ्यास और विचार शक्ति से इन सारे साधनों का अनुभव प्राप्त किया। इन्हीं साधनों में से एक नेति क्रिया भी है। नेति क्रिया के विषय में ऋषियों अपने दादा गुरुदेव आदि जो ईश्वर ये साधना में लगे रहते थे, और गुरुजियों ने जो वर्णन किया है और उनके जिज्ञासु विभिन्न रोगों की पीड़ित व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। नेति अनेक पैथियों और अर्थात चिकित्सा पद्धतियों से श्रेष्ठ तथा लाभदायक साधन है। इस नेति के द्वारा कई प्रकार के रोगों को दूर किया जा चुका है। भगवान ने मनुष्य का शरीर कैसा अनोखा बनाया है कि इसमें सारे ब्रह्मांड की रचना की। जो वस्तुएं संसार में दृष्टिगोचर होती है वे सब इस शरीर में। इस शरीर का मुख्य भाग सिर है, जो विचार शक्ति का स्रोत है। भीतर व बाहर से शक्ति प्राप्त करने और प्रकृति से हर प्रकार का लाभ उठाने के लिए ही सिर में नेत्र, नासिका, कान, जीवा, मुख, मस्तिष्क आदि है। जो भाग मस्तक से शक्ति प्राप्त करके अपना अपना कार्य भली प्रकार करते हैं। प्रकृति ने मल व रोगों के कीटाणु व परमाणु बाहर निकालने के अनेक मार्ग बनाए। जिस मार्ग से मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है उससे ही मल बाहर निकालता है। यदि हम नासिका से श्वास लेते हैं तो इससे शरीर को बलगम नजला भी बाहर निकालते हैं। यदि हम नेत्रों से देखकर प्रकृति की सुंदरता का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इन नेत्रों द्वारा गंदा जल भी बाहर फेंकते हैं। इसी प्रकार कानों से सुनते भी हैं और मल भी बाहर निकालते हैं। यदि हम मुंह से स्वादिष्ट भोजन खाकर शक्ति प्राप्त करते हैं तो उसी मुंह से बलगम बाहर फेंकते हैं। यह एक निश्चित सिद्धांत है कि यदि शरीर में मल इकट्ठा न हो और साथ साथ ही बाहर निकलता रहे तो मनुष्य रोगी नहीं हो सकता। चरक शास्त्र के अनुभवी विद्वानों का मत है कि शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो शरीर में रोगों को प्रविष्ट होने से रोकती है, और वही शक्ति शरीरस्थ रोगों को शीघ्र नष्ट भी करती है। यह शक्ति अमूल्य है और इसका मुख्य केंद्र सिर है। मस्तिष्क में तीन शक्तियों का मिलाप होता है। सिर में नाड़ियों के एक समूह में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियां निकलती हैं। यही तीनों नाड़ियां तीन शक्तियों का भंडार है। यही पूर्ण शारीरिक शक्ति देती है। इन तीनों नाड़ियों से जो अमृत टपकता है उसे पूर्णतः प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में नहीं। इससे थोड़ा सा भाग मनुष्य के शरीर में रह जाता है, जिसके कारण मनुष्य की शक्ति बनी रहती। यदि मनुष्य वह अमृत पूर्णता प्राप्त कर ले तो न तो विष उस पर अपना प्रभाव डाल सकता, न वृद्धावस्था शीघ्र निकट आ सकती, और न ही किसी प्रकार का कष्ट या रोग निकट आ सकता है। यह अमृत योग विद्या की खेचरी मुद्रा के द्वारा ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जब श्वास लेता है तो वही अमृत श्वास से टकराकर पानी बन जाता है। यही पानी मनुष्य को हर समय प्राप्त होता रहता है, जिसे मनुष्य प्रतिपल अनुभव भी करता है। योगी ऊंचे व दीर्घ श्वासों से उत्पन्न जल को अमृत रस कहते हैं। इस अमृत रस से सभी अंग व जोड़ शक्तिशाली बनते हैं। तीनों शक्तियों में से एक शक्ति वह है जो सुख दुख को अनुभव करती है। इन तीनों शक्तियों का पालन शरीर में आत्मा की चैतन्य शक्ति, चेतन रहने की शक्ति द्वारा हर समय होता रहता है। इस अभ्यास में हमारा विषय अमृत रस है, जिसे प्राप्त न कर सकने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों में फंस जाता है। नथने से लेकर कंठ तक ऐसी नाड़ियों का समूह है जो मस्तिष्क मंडल की सहायता करता है। इन नाड़ियों का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। यदि इनमें मल इकट्ठा हो जावे तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह मल अंगों को निर्बल करके रोगों के कीटाणुओं को बढ़ाने का अवसर देता है। परिणाम स्वरूप एक रोग के बाद दूसरा रोग आ घेरता है। जैसे एक मनुष्य को जुकाम के बाद खांसी हो जाती है, फिर खांसी से बढ़कर दमा तथा यक्ष्मा अर्थात तपेदिक तक हो जाते हैं। ऋषियों ने नाड़ियों से इस बलगम को दूर करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे साधन खोज निकाले हैं। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि नेत्र, नासिका, कर्ण व मुख को स्वस्थ रखने वाली शक्ति मस्तिष्क से निकलकर इन अंगों को शक्ति देती हुई सारे शरीर में पहुंच जाती है। इन नाड़ियों से बलगमी नाड़ियों का समूह उत्पन्न होता है जिनका केंद्र नथनों के मार्ग में है जो कि नासिका के अग्रभाग से कंठ तक चला गया है। जिस समय मनुष्य शीतल वायु में भ्रमण हेतु निकलता है उस समय जो वायु श्वास द्वारा भीतर प्रवेश करती है उससे आंखों में पानी आ जाता है, किंतु शरीर में गर्मी होने के कारण शीतल वायु अच्छी लगती है। जब कभी मनुष्य को उच्च आता है तो नासिका से पानी जाने के कारण मस्तिष्क व कानों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिस समय नासिका से दूध या पानी पिया जाए तो डकारे आने लगती है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे वायु ऊपर की वस्तु किसी ने नीचे धकेल दी हो। कंठ स्वच्छ हो जाता है और मस्तिष्क में भी नया बल आ जाता है। कभी कभी शीतल वायु लगने से दांतों में दर्द हो जाता है। उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि नासिका मार्ग से कोई वस्तु सेवन की जाए तो उसका प्रभाव उसी समय कान आंख मुंह आदि पर होता है। अतः यदि मानव चाहता है कि उसके कंठ दांत नाक कान आंख और मस्तिष्क आयु भर अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें तो उसे नहाने से पूर्व नेति क्रिया करते रहना चाहिए। केवल इतना ही करने से वह आयु भर खुशी एवं आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। नाड़ियों से पैदा हुए अमृत रस के द्वारा ही आंखें अपना काम सुचारू रूप से करती। आंखों की पलकों में वह रस जब तक गिरता है आंखें हरकत करती रहती है। यदि रंग गंदा होता है तो आंखों में कुकरे फुल्ला धुंध आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रस होने से और रस के शुद्ध होने से कोई रोग समीप नहीं आ सकता। मल अपने आप निकलता रहता है। मल यदि अधिक हो तो आधे सिर में दर्द का कारण बन जाता है और कुछ एक को समय पाकर दूसरे रोग जैसे कि मिर्गी पागलपन और दिमाग के कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। बाल भी इसी कारण से सफेद हो जाते हैं। यदि रक्त शुद्ध हो तो दृष्टि सुनने की शक्ति याददाश्त व सोचने आदि की शक्ति सभी प्रदीप्त होती जाती है। इसी प्रकार सूंघने के केंद्र और दांतों की जड़ों तक भी यही नाड़ियां काम करती हैं। शुद्ध रस पाने से दांत मजबूत हो जाते हैं और गंदा होने की वजह से पायोरिया आदि जैसे असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं। इस गंदे रस की वजह से अंजीरे गले का सूजना टॉन्सिल जबान का फट जाना आदि कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शुद्ध रस होने से कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। शुद्ध रस चेहरे को खूबसूरत और गंदा रस उसे निस्तेज पीला सफेद एवं काला बनाने का प्रधान कारण होता है। यही रस कंठ से लेकर दिमाग तक मुख्य काम करता है। आप इस पर भली प्रकार सोचिए कि इसका प्रभाव बाकी शरीर पर क्या पड़ता है। यह रस भोजन करने के पश्चात अपने आप मैदे में गिरता है और मैदे में गिर कर खाने के साथ छोटी आंत के द्वारा खून में मिलता रहता है। यदि यह रस साफ और अमृत की शक्तियों से मिला हुआ हो तो खून में जाकर भी सात्विक शक्ति ही पैदा करता है। कारण कि सारा शरीर खून के दौरे पर ही निर्भर है और खून इस अमृत रस के द्वारा शक्तिशाली बनता है। इसी कारण समग्र शरीर की रक्षा इसी अमृत रस के द्वारा होती है। रक्त का संचार प्रत्येक नस नाड़ी में होता है तथा फेफड़े तिल्ली गुर्दा तथा दिल आदि प्रत्येक अंग में रक्त संचार के कारण ही बल रहता है। किंतु यदि रक्त को शक्ति प्रदान करने वाला अमृत रस ही मल में परिवर्तित हो जाए तो रक्त प्रवाह जिगर के काम में बाधा डालेगा। बाधा पड़ने पर भोजन नहीं पचेगा। इसी प्रकार मल बढ़ जाने पर जिगर तथा फेफड़ों पर सूजन हो जाएगी जिससे पीलिया दर्द गुर्दा आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। यदि यही मल रक्त में मिल जाता है तो दिल निर्बल होकर धड़कने लगता है। शरीर का पोषक वीर्य रक्त से ही निर्मित होता है। जैसा रक्त होगा वैसा ही वीर्य बनेगा। वीर्य निर्बल होने से शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाएगा। वीर्य की क्षीणता के कारण संतति भी निर्बल उत्पन्न होगी। इससे यह सिद्ध हुआ कि शरीर में यही अमृत रस स्वास्थ्य रक्षा का मूल कारण है। अस्तु नाक से जो श्वास लेते हैं वे श्वास उसी रस से टकरा कर फेफड़ों में जाते हैं। रस गंदा होने के कारण श्वासों की गति एक सी नहीं रहती। श्वास से फेफड़ों के अंदर के कोशों पर भी कभी कम कभी अधिक दबाव पड़ता है, जिससे वे कोश फट जाते हैं और अशुद्ध रक्त के कारण इनमें सूजन अधिक हो जाती है और अंत में तपेदिक, दमा, सिल आदि का दौरा शुरू हो जाता है। यह तो हुआ गंदे रस का शरीर पर प्रभाव। लेकिन यदि इसी रस को सूत्र नेति, जल नेति, दूध नेति आदि साधनों से अमृत में बनाकर शरीर में चलाया जाए तो वह सारे शरीर को रोगों से सुरक्षित रखकर उसमें जीवन की शक्ति पैदा करके शक्तिशाली बना देगा। परिणाम स्वरूप अमाशय जो सदा विकार युक्त रहता था अब रोग समूल दूर करने के योग्य हो जाएगा। खून में नए रक्त कण पैदा होते हैं जिसके कारण से शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा होती है। यह अमृत शक्ति सारे शरीर में दौरा करती है और शरीर के जिस भाग में कोई कमी दिखती है उसे शीघ्र ही पूरा कर देती है। जब इस अमृत शक्ति का प्रभाव फेफड़ों पर पड़ेगा तो श्वास की गति समान हो जाएगी, फेफड़ों को पूरी शक्ति देगी और तपेदिक, दमा, सिल आदि के कीटाणुओं को नष्ट करके नया रक्त, नई शक्ति या नया जीवन प्रदान करेगी। इसी प्रकार जब अमृतमयी शक्ति खून में मिलकर शरीर और उसके प्रत्येक अंग पर प्रभाव डालेगी तो उसमें कोई भी असाध्य रोग क्यों न हो दूर ही हो जाएगा। जब यह अमृत शक्ति ऊंचे विचारों से भरी हुई होगी तो शरीर को अमृत रस स्वयं ही प्राप्त होगा। इस अमृत रस को उत्पन्न करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता है जो साधकों को समझ लेनी चाहिए। नंबर एक, जब तक नाड़ियों का मल साफ न हो तब तक उनमें अमृत रस प्राप्त करने की शक्ति न आवेगी, परिणाम स्वरूप दिमाग कमजोर हो जाएगा। दूसरा, जब तक भोजन सात्विक न होगा तब तक सात्विक विचार उत्पन्न न होंगे, फलस्वरूप अमृत रस प्राप्त न हो सकेगा। तीसरा, शरीर का पुष्ट होना आवश्यक है। जब तक स्वच्छ रस से शरीर को पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक उसको वीर्य की कमजोरी दूर करने के लिए आश्रम में जाकर योगासन, चने की कच्ची दाल का प्रयोग और प्राणायाम की सहायता लेना आवश्यक होगा। जो मल दिमाग में रुककर स्मरण शक्ति की दुर्बलता का कारण बनता है या नेत्र ज्योति की दुर्बलता, कुकरे, पड़वाल, मोतियाबिंद आदि नेत्र रोगों को उत्पन्न करता है, वृद्धा अवस्था में स्वर्ण नेन्द्रियों को दुर्बल बनाता है अथवा नासिका, दांत, गला आदि की शक्तियों को मंद करता है, उस मल का नेति द्वारा सुगमता पूर्वक शोधन हो जाता है। तत्पश्चात उष्ण जल नेति से वायु की निवृत्ति और शीत जल नेति से पित्त के साथ पित्त आदि से उत्पन्न हुई खुश्की और दुर्बलता दूर हो जाती है। अतः अपने शरीर को सदैव आरोग्य तथा जीवन भर नित्य नवीन शक्तियों की इच्छा रखने वाले साधकों को नेति अथवा साधनों को सीखना तथा करना चाहिए और इनका आचार प्रचार कर संसार में आरोग्य शक्ति को स्थिर रखने में सहायक और सहायता बननी चाहिए। सूत्र नेति बनाने की क्या विधि हो सकती है ये आप जानेंगे अभी। सूत्र नेति एक विशेष सूत्र से बनाई जाती है जिसके दोनों सिरों पर या इस प्रकार रहते हैं कि सूत्र बाहर न निकले। और वास्तव में नेति बनाने का तरीका हमारे आश्रमों में आकर सीखा जा सकता है। कारण कि बहुत से स्थानों पर बल्कि कई योग केंद्रों में भी सही सूत्र नेति बनाना नहीं आता और रबड़ जो कैथेटर का प्रयोग में लाया जाता है जिसके करने से कोई लाभ न होकर करने कराने में समय व्यर्थ जाता है। जिस प्रकार नहाते समय सूती तौलिये अर्थात खद्दर के बदन न पहुंचकर कोई अनभिज्ञतावश मीटर डेढ़ मीटर रबड़ लेकर बदन पोंछना चाहे तो ऐसा करने से तो बदन ही साफ होगा और न तो बदन साफ होगा और न ही रोम कूप ही खुलेंगे जो कि नहाने का मुख्य लक्ष्य होता है। कई सज्जन सूत्र नीति को केवल धागा मात्र समझकर कच्चा पक्का 10-15 सेंटीमीटर बटकर लंबा धागा खुला छोड़ देते हैं और उसके ऊपर मोम लगाकर प्रयोग में लाते हैं। उनके लिए ये दोनों यंत्र सूत्र नीति की पूर्ति नहीं करते। अब हम आपको सूत्र नीति बनाने का तरीका बता रहे हैं। सूत्र नीति बनाने के लिए सूत्र के कितने तार होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका एक ही नियम नहीं हो सकता, क्योंकि सूत्र एक सार नहीं होता, कोई महीन और कोई मोटा होता है। दूसरा, नासिका के छिद्र भी भिन्न भिन्न छोटे बड़े होते हैं। यह स्पष्ट है कि यदि सूत्र नेति इतनी मोटी है कि नासिका के छिद्र से गुजर ही नहीं सकती या अधिक कठिनाई से स्थानों को छीलती हुई गुजरती है तो नाक में पीड़ा और सूजन हो जाने का भय है, वह नेति नहीं हो सकती। और यदि नेति इतनी पतली है कि उसकी रगड़ दबाव नासिका के अंदर कपाल, कंठ और मुख, नेत्र, स्रोत आदि केंद्रों की नाड़ियों को नहीं लगती तो वह नेति भी इतनी लाभदायक नहीं होगी। अतः नेति की मोटाई नासिका के छिद्र अनुसार इतनी कम अधिक होनी चाहिए कि नेति का नासिका, कंठ, कर्ण, नेत्र आदि स्थानों की नाड़ियों को केंद्र स्थानों को घर्षण करती हुई मुख से निकले। नेति चरखे से कटे हुए साधारण सूत्र के तारों से तैयार की जानी चाहिए। बालक से लेकर बड़ी अवस्था तक के मनुष्यों के लिए 27, 81, 108, 162 तार तथा अपने छिद्रानुसार इससे भी अधिक की नेति की प्रयोग में लाई जाती है। यदि 81 तार की नेति बनानी हो तो चरखे का कटा हुआ चिकना सूत्र 54 मीटर लेकर तिहरा करके फिर तिहरा कर लेना चाहिए। इस प्रकार 54 मीटर सूत्र लंबाई में केवल 6 मीटर रह जाएगा। उसे फिर तिहरा कर लेने पर केवल 2 मीटर लंबा सूत्र रह जाएगा। उसे पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद उसे निकालकर इतना बट देना चाहिए कि 3 बार की कड़ी डोरी बने। कड़ा बट देने के बाद जो 2 मीटर लंबा तार को इस प्रकार तिहरा करके मोटा बनाना चाहिए कि तार का एक सिरा तार के बीच में डालकर बाहर निकल जाए ताकि वह सिरा डोरे के समान के रूप में मिल जाए और तैयार हुई 3 तार की डोरी को एक सिरा भी ऐसा न रहे जिसका एक भी तार बाहर मालूम हो। इस प्रकार जितनी मोटी नेति की आवश्यकता हो उतना ही सूत्र लेकर नेति बना लें। निर्माण की हुई नेति 45 से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। नेति की डोरी इतनी कड़ी होनी चाहिए कि बीच में से पकड़कर अपनी को खड़ी करे तो वह सीधी खड़ी हो जाए। नेति रामबाण है। नेति बहुत से रोगों के चिकित्सा में उपयोगी सिद्ध हुई है, विशेषकर आंखों की दुर्बलता तथा दृष्टि क्षीणता को दूर करने के लिए नेति क्रिया तो रामबाण ही है। निरंतर 2-3 मास तक नेति करने से लगे चश्मे भी उतर जाते हैं। आंखों की दृष्टि कितनी भी क्षीण क्यों न हो विविध प्रकार की नेति के अभ्यास से पुनः आ जाती है। नेत्र रोगों में सूत्र नेति या जल नेति के पश्चात आंखों को जल से धो लेना अधिक उपयोगी है। यदि नेत्रों में कुकरे, पड़वाल, सुर्खी आदि इत्यादि रोग हो तो साधक को चाहिए कि सूत्र नेति, जल क्रिया, दूधपान आदि सभी क्रियाएं चिकित्सा स्वरूप करनी चाहिए। सूत्र नेति करने की विधि क्या है? नेति करने के लिए साधक को एक लोटे में जल भरकर पांव के बल शरीर को सीधा रखते हुए नेति हाथ में लेकर बैठना चाहिए। फिर जल में नेति को भिगोकर दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़े कि बायां हाथ नेति के ऊपर के सिरे की ओर और दायां हाथ उसके नीचे रहे। दाहिने हाथ का अंगूठा और उसके साथ की 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा तथा बाएं हाथ के अंगूठे व तर्जनी द्वारा नेति को पकड़कर सीधी कड़ी रखते हुए नासिका के एक छिद्र में बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रविष्ट करें। उस समय साधक की नासिका में खुजली होगी और छींके भी आ सकती है। इससे साधक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु नेति को ऊपर की ओर प्रविष्ट करते रहना चाहिए। जिस समय नेति नासिका के छिद्र में अंदर जाएगी, नासिका में खुजली के साथ साथ नेत्रों में जल भी आ सकता है। इसके पश्चात नेति गले में पहुंचती है। नेति के दबाव से कफ वाली नाड़ियां, जिसमें मल रुका रहता है, सारा कफ निकलकर बाहर फेंक देती है और सिर के सर्व भागों में जो भी अमृत रस उत्पन्न करने वाली नाड़ियां हैं, वे शुद्ध होकर अमृत रस उत्पन्न करने योग्य बन जाती है। जिस भाग में जितना अधिक रोग होगा वो होगा उतना ही अधिक गंदा जल एवं मल निकलेगा। नेति जब कंठ से निकट पहुंचती है और काग से टकराती है तो ओबकाई सी आने लगती है। उस समय साधक को दाहिने हाथ की तर्जनी एवं मध्यम उंगलियों को मुख में डालकर नेति को पकड़कर धीरे धीरे मुख से बाहर की ओर खींचना चाहिए। ऐसा करते समय नेति को नासिका में दूसरे हाथ से ऊपर की ओर धकेलते रहना चाहिए। जब नेति मुख से कुछ अधिक बाहर आ जाए तो नासिका से वापस लोटा देना चाहिए। नासिका के दोनों छिद्रों में नेति कर लेने से ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती। नेति जिस प्रकार नासिका के एक छिद्र में डाली जाती है, उसी प्रकार दूसरे छिद्र में भी डालनी चाहिए, जिससे सिर के दोनों भागों का सारा मल बाहर निकल आए। कोई कोई साधक पहली बार क्रिया करने में सफल नहीं हो पाता और नेति कंठ तक नहीं आ पाती, अपितु मध्य में ही रुक जाती है अथवा टेढ़ी हो जाती है। इससे साधक को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नेति के रुक जाने अथवा आगे न बढ़ पाने तथा इकट्ठा हो जाने का यह कारण हो सकता है कि या तो नेति नासिका के छिद्र से अधिक मोटी है, या ढीली अथवा नासिका के छिद्र में सूजन है, या कुछ हड्डी अथवा मांस बड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में नेति यदि मोटी हो तो पतली नेति प्रयोग में लानी चाहिए। यदि नासिका के छिद्र का मांस बड़ा हो तो पतली नेति बनाकर और वस्त्र से खींच तान कर प्रयोग करनी चाहिए। ऐसा करने से नेति क्रिया सुगमता से हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेति कुछ ऊपर जाकर आगे नहीं बढ़ती अथवा साधक नासिका के एक छिद्र में नेति करने में सफल हो जाता है, किंतु दूसरे छिद्र में बार बार नेति घेरने में भी आगे नहीं बढ़ जाती। ऐसी अवस्था में साधक को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु जब नेति नासिका से आगे बढ़ती हो तो उसे धीरे धीरे नासिका से बाहर निकाल लिया जाए और पानी से धोकर सीधी करके कड़ी रखते हुए पुनः उपरोक्त विधि से ही नासिका में प्रविष्ट करें। एक हाथ से ऊपर की ओर धकेलने से नेति अवश्य कंठ तक पहुंच जाएगी। ऐसा करने पर भी यदि सफलता न मिले तो उस दिन के लिए नेति क्रिया का अभ्यास स्थगित कर दिया जाए और दूसरे दिन पुनः प्रयास किया जाए। दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा कठिनाई कम होगी, छींके भी कम आएंगी और नासिका में खुजली भी अधिक न होगी। साधक जिस छिद्र के द्वारा नेति ऊपर नहीं चढ़ा पाता, वह दूसरे तीसरे दिन उसी छिद्र से नेति को प्रविष्ट करके मुख से निकालने में अवश्य सफल होगा। छींके आना अथवा नासिका में खुजली होना केवल पहले 3-4 दिन ही होता है। नित्य प्रति कुछ दिन के अभ्यास से दातून कुल्ले की भांति बड़ी सरलता से साधक नेति करने लग जाता है। जल नेति। सूत्र नेति के पश्चात जल नेति क्रिया का महत्व उतना ही अधिक है जितना कि मल युक्त नाली को बांस से साफ कर पानी से धोने का है, किंतु साधक को पहले अपनी प्रकृति को जान लेना चाहिए। यदि गर्म पदार्थ खाने से गर्मी या जलन प्रतीत होती है और वे पदार्थ उसे गर्मी पहुंचाएं, तो उसकी प्रकृति गर्म जाननी चाहिए। यदि गर्म पदार्थ पच जाएं और ठंडी वस्तुओं से हानि करें तो मानना चाहिए कि प्रकृति वायु में है। इस प्रकार यदि जुकाम गर्मी से होगा तो दिन में सिर पीड़ा रहेगी और रात्रि में बंद हो जाएगी। यदि ठंडी प्रकृति का होगा तो रात्रि में सिर दुखेगा और दिन में आराम रहेगा। जल नेति क्रिया करते समय ठंडी प्रकृति वाले साधारण उष्ण जल और गर्म प्रकृति वाले साधक ताजा जल नमक डाल छानकर प्रयोग करें। करने की क्या विधि है? जल क्रिया वाले खास टूटीदार लोटे में छना हुआ नमकीन जल डालकर पांव के बल मेड को सीधा रख के और बैठ जाए, उकड़ू बैठ जाए। सिर को दाईं ओर झुकाते हुए बाएं हाथ में टूटी वाला लोटा पकड़ नासिका के बाएं छिद्र में रख लोटे की ओर देखे। ऐसा करने से जल अपने आप नासिका के दूसरे छिद्र से नीचे गिरने लगेगा। जब जल नीचे गिरने लगे तो नासिका में बराबर जल डालते रहे। इस प्रकार नासिका के छिद्र में 700 ग्राम से 1 किलो पानी निकालना चाहिए। ठीक इसी विधि से दाएं छिद्र द्वारा पानी डालकर बाएं छिद्र से बाहर निकालना चाहिए। साधारणतः तो साधकों को यही प्रयोग उचित रहेगा, परंतु वात और पित्त प्रकृति वाले साधकों को शीत उष्ण दूध निकालना चाहिए। वायु प्रकृति वाले को दूध में थोड़ा सौंठ पका छना नासिका द्वारा प्रयोग करना चाहिए। इन क्रियाओं का ज्ञान व चिकित्सा का पूर्ण लाभ आपको किसी साधक और योगी के साथ अवश्य जरूर करना चाहिए, ताकि आप गलती ना करें और इसको फिर विधिवत अपनाएं, जीवन में अपनाएं। नासिका द्वारा जलपान, नासिका द्वारा जलपान की विधि आपको समझा देना अत्यावश्यक है। सूत्र नेति आदि क्रियाओं से जब नासिका रंध्र शुद्ध हो जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में ताजे जल और शरद ऋतु में गर्म सुहावने जल में सेंधा नमक डालकर इतना डालें कि पानी थोड़ा नमकीन हो जाए। इस जल को अच्छे कपड़े से छानकर टूटी वाले बर्तन में लें और साफ स्थान पर बैठकर लोटे को हाथ से पकड़कर मुख को सीधा रखते हुए प्रथम जो स्वर चलता हो उसमें लोटे की टूटी फिट करें। इतना ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जल नासिका द्वारा पान करते समय श्वास पीने वाली नासिका से बाहर न छोड़े। फिर जैसे मुंह से पानी पिया जाता है वैसे ही जल नासिका में जाकर पेट में जाना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार नासिका के दूसरी ओर से भी बराबर मात्रा में जल पीना चाहिए। इसके संबंध में आयुर्वेद में जो लाभ लिखे हैं वे नीचे दिए गए हैं तथा हमारे जो भी हमारे आश्रम है उनमें भी आप ये कर सकते हैं। प्रातःकाल नासिका द्वारा जल पीने से नेत्रों के रोग जैसे आंख में खुजली, जल बहना, दिन को आंखें घुटे रहना और फुंसी निकलना आदि ठीक होकर नेत्रों की ज्योति अपूर्व हो जाती है। इसके अतिरिक्त पुराना रेशा जुकाम, गले पड़ना, गले का बैठना, खांसी, शरीर का दुबलापन, बालों का सफेद हो जाना, मुख पर झुर्रियां पड़ जाना, बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता इत्यादि रोग दूर रहते हैं और वायु दीर्घ होती है। दूध का सदुपयोग कैसे करें? दूध को संस्कृत में क्षीर कहते हैं। येन रोगा क्षीयन्ते अर्थात जिससे रोगों का नाश हो उसे क्षीर कहते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक तीन प्रकार के रोग होते हैं जिनकी चिकित्सा के लिए ऋषियों ने दूध का उपयोग बतलाया है। वैसे दूध तो कई पशु देते हैं, परंतु शास्त्रों में गाय के दूध को सर्वोत्तम माना है, क्योंकि गाय के दूध में अत्यधिक गुण होते हैं जो कि मनुष्य के हृदय एवं मस्तिष्क के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं। इसी कारण हिंदू जाति ने गाय को माता का स्थान दिया है। अज्ञानतावश दूध अमृत तुल्य वस्तु होते हुए भी हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद न होकर विष बन जाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें दूध पचता ही नहीं और यदि पी लें तो उनके पेट में वायु पैदा हो जाती है। यह दोष हमारी अज्ञानता के कारण है। दूध तो अमृत है। अनेक प्रकार के रोग तो दुग्धपान से अमृत की धारणा करने पर ही दूर हो जाते हैं। जैसे धारणा होती है वैसे ही परिणाम होता है। योगी भक्त धारणा शक्ति द्वारा संकल्प मात्र से ही विष को भी अमृत बनाकर या मानकर पी जाते हैं। जैसा कि भक्त शिरोमणि मीराबाई को राणा ने जब विष का प्याला दिया तो वह गाती हुई उसे पी गई। राणा भेजा जहर का प्याला, मीरा अमृत कर पी जाना। अमृत की धार न करने से मीरा पर विष का प्रभाव न हो सका। अतएव प्रत्येक वस्तु का सेवन करते समय हमारी धारणा दृढ़ होनी चाहिए कि जिस वस्तु का हम सेवन कर रहे हैं वह हमें अमृत का फल देगी। यदि विश्वास रखोगे तो वस्तुतः वह तुम्हारे लिए अमृत का फल अवश्य देगी। गाय के दूध में तीन शक्तियां हैं। ब्राह्मी शक्ति जो हमारे अंदर नवीन शक्ति को पैदा करती है, वैष्णवी शक्ति जो हमारे अंदर की दुर्बलता को नष्ट करके हमें शक्तिशाली बनाती है, दैवी शक्ति जो शरीर की स्वाभाविक प्रकृति के घातक परमाणुओं को नष्ट करती है। दूध पीते समय उसके लाभों का ज्ञान होना चाहिए। दूध पीने से मल विसर्जन ठीक प्रकार से होता है। दूध अमावस्य की गर्मी को शांत करता हुआ नाड़ियों तक पहुंचता है और वहां के विषैले मल का शोधन कर देता है, जिससे उन नाड़ियों में नवीन जीवन का संचार होता है। दूध पीते समय इन बातों का ध्यान कर लेना चाहिए कि वह इतना ही गर्म ठंडा हो जितना कि गाय का ताजा दूध होता है। दूध एकदम कभी भी कभी नहीं पीना चाहिए। दूध को धीरे धीरे इस प्रकार पिएं कि दूध पीते समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जा सके। इस प्रकार पिया हुआ दूध शीघ्र ही पच जाता है और अमृत तुल्य लाभ करता है। कभी कभी दूध नासिका द्वारा भी पीना चाहिए। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि नेत्र क्रिया के पश्चात नासिका द्वारा दूध पीने से अनेक रोग समूल नष्ट हो जाते हैं और इससे शरीर की अमृत तत्व की कमी पूरी हो जाती है। यह बात उल्लेखनीय है कि मुख द्वारा जल अथवा दूध न पीकर नासिका द्वारा पान करने की विधि क्यों बताई गई है। यह संशय पाठकों के हृदय में भी बार बार उठ रहा होगा। इसका कारण यह है कि जहां दोनों नेत्रों की भौहों के बाल मिलते हैं वहां मस्तक के नीचे सभी नाड़ियों का केंद्र है, जहां से होकर नस नाड़ियां नेत्र कर्ण हृदय मस्तिष्क आदि स्थानों प्रवेश करती है और मल भी छोड़ती है। इस कारण उन स्थानों पर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसी प्रकार इस चले हुए नजले को वहां से दूर कर दिया जाए और इस केंद्रीय स्थान पर एक ऐसी वस्तु पहुंचा दी जाए जो नासिका कर्ण नेत्र हृदय मस्तिष्क आदि अंगों को गर्मी की अपेक्षा तरावट दे और शक्ति पहुंचाए तो उन अंगों में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने का यही एक साधन है कि सूत्र नीति द्वारा मस्तिष्क का मल शोधन कर दिया जाए और नासिका से दुग्ध पान करके उस केंद्रीय स्थान पर अमृत तत्व भर दिया जाए और इस अद्वितीय साधन से गर्मी खुश्की को दूर करके वहां से संबंध रखने वाले सभी अंगों को शक्तिशाली बनाया जाए। नासिका द्वारा दूध पीने से सारा दूध उदर में नहीं चला जाएगा, अपितु प्रतिदिन दूध का कुछ अमृत तत्व उस केंद्रीय स्थान में एकत्रित होता रहेगा। तदुपरांत वहां से उस शक्ति के रूप में शरीर में प्रत्येक अंग में पहुंचता रहेगा। इस क्रिया के से जो रोग इस अंग में होगा उसके दूर होने के साथ वह अंग शक्तिशाली बनता जाएगा और ऋतु अनुसार करने वाला साधक सदा स्वस्थ रहेगा। आशा है कि इस तरह की चीजें आप समझ जाएंगे और दूध या जल नासिका से पीना कितना लाभकारी है यह भी बहुत सारे ऋषियों ने बयान किया है। सिर में सूल के समान पीड़ा हो रही हो तो नासिका द्वारा दूध पीने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त परम चिंतन शक्ति बढ़ जाएगी। यह सभी का जो भी साधक इस तरह काम करते हैं उनके अनुभव है। नासिका से पिया हुआ दूध मस्तिष्क की थकावट दुर्बलता और परेशानी की तक्षण लाभ पहुंचाता है। मुख से पिया हुआ दूध पहले अमाशय में पहुंचने से रक्त बनने के बाद कुछ अंश मस्तिष्क की ओर आता है। मस्तिष्क की गर्मी खुश्की आदि नासिका से दूध पीते ही दूर हो जाती है। तत्पश्चात वह दूध नासिका नेत्र हनु कंठ कर्णादि के दोष व मल दूर करता है और फेफड़े के भी अनेक रोग ठीक करता है। इसी प्रकार स्वस्थ गाय का दूध नासिका द्वारा पिया हुआ रक्तचाप तथा हृदय गति अवरोधन जैसे भयानक रोगों को अतिशीघ्र शांत कर देता है। गजकर्णी क्या है इसकी ओर ध्यान दिलाना बड़ी जरूरी है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले केंद्र स्थान की कुछ नाड़ियों का मुख नीचे की ओर और कुछ का ऊपर की ओर होता है। इसी कारण सूत्र नेति की व्याख्या में यह वर्णन किया गया है कि नेति को धीरे धीरे ऊपर नीचे फेरना चाहिए, जिससे दोनों प्रकार की नाड़ियों में घर्षण हो और उनका मल बाहर आ जाए। किंतु जल नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति आदि में तो एक ही ओर से जल, दूध, घृत आदि डालकर निकाला जा सकता है। ऊर्ध्वमुखी नाड़ियों को स्वच्छ करने एवं उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए गज करने की आवश्यकता होती है। इस क्रिया का करना कठिन है, किसी योगाचार्य के निरीक्षण में ही करना चाहिए। इसकी विधि क्या है? सुख जो आपका सुख पूर्वक करना है तो यह है कि विधि क्या है, मुख द्वारा जल या दूध कंठ तक भरकर ठोड़ी को छाती से लगाकर नासिका द्वारा जल बाहर निकालने को गज करनी कहते हैं। साधक को कुछ समय के भीतर अवश्य सफलता मिल जाती है। लाभ, गज करनी करने वाले साधक का गला शुद्ध एवं स्वच्छ रहता है और आवाज मधुर हो जाती है। वर्षों के लगे चश्मे उतर जाते हैं। नासिका रंध्र साफ शुद्ध हो जाने से प्रधान नाड़ियां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सुचारू रूप से कार्य करने लग जाती है। सफेद बाल काले हो जाते हैं। एक सप्ताह के अभ्यास से चेहरा सुंदर और कांति युक्त होने लगता है। मन की चंचलता हटकर मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। धारणा ध्यान में यह क्रिया सर्वोत्तम सहायक सिद्ध हुई है। कुछ दिन इस क्रिया का अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। विशेष रूप से गज करने का सदुपयोग हमारे बड़े बड़े ऋषि गुनी और ऋषि मुनि करते थे। उनके आश्रमों में पहुंचकर भी लोग इस विधि को सीखते थे। यह क्रिया देखे दिखाए आरंभ कर दी जाए तो अनभिज्ञता के कारण कई प्रकार के मस्तिष्क संबंधी रोग दोष भी हो सकते हैं। इसलिए इसको किसी साधक के साथ ही और सुगमता से सीख कर ही करना चाहिए। ब्रह्मदातून, जिस प्रकार सूत्र नेति आदि क्रियाएं कंधे से ऊपर की समस्त नस नाड़ियों का मल शोधन करती है, उसी प्रकार कंठ से नीचे उदर तक के मल शोधन हेतु ब्रह्मदातून की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि अमाशय के में वात पित्त कफ दूषित हो जाए तो वह अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता। जिसके चिन्ह यथा खट्टी डकारे, गैस का रुकना, सोच के साथ श्वेत व अन्य कृमियों का आना, जिगर, यकृत व प्लीह का ठीक कार्य न करना, छाती व कलेजे में दर्द, ऐंठन, भूख न लगना, चेहरे की आकर्षण शक्ति का लोप हो जाना, आंखों की कमजोरी, जलन, पानी चलना इत्यादि उपरोक्त दोषों से बचने के लिए ब्रह्मदातून करने की आवश्यकता होती है। इस कारण अमावस्य को यथाविधि ब्रह्मदातून द्वारा धोकर साफ कर लेना आंखों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसकी विधि है 45 से 50 सेंटीमीटर समतल स्थान पर पांवों के बल बैठ जाना चाहिए। तदंतर वस्त्र से तैयार की गई ब्रह्मदातून को पहले अलग गर्म पानी में डालकर बाईं ओर और ब्रह्मदातून के लिए तैयार किया गया जल किसी साफ बर्तन या कलई के हुए बर्तन में छानकर दाईं ओर रखें। तत्पश्चात स्वच्छ गिलास से यह जल मुख से पीते जावे। पीते पीते जब उल्टी का आभास होने लगे तो ब्रह्मदातून दाएं हाथ से पकड़ें और धीरे धीरे गले के अंदर तक ले जावे और बाएं हाथ से नाभि अथवा पेट को थोड़ा दबावे। इससे पिया हुआ जल उछलकर बाहर आने लगेगा। क्रिया करते समय मूल बंद लगाए हुए उड्डयन बंद की भांति पेट को क्रम से सिकोड़ना व छोड़ना चाहिए। ब्रह्मदातून के तुरंत बाद भूमि पर 2-4 मिनट सीधे लेट जाएं। ऋतु के अनुसार वस्त्र ऊपर लेकर शवासन करें। बहुधा लोग ब्रह्मदातून को एक साधारण सी योग क्रिया समझते हैं और उपरोक्त सुझावों को भली प्रकार समझे बिना ही देखी देखी जैसा तैसा पानी पीकर निकाल देते हैं। इससे यदि 100 में से किसी 2-4 को लाभ भले ही हो जावे, अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना रहती है। इसलिए सभी को आयु ऋतु अच्छी तरह समझकर पित्त प्रकृति वालों को सौंफ या नींबू का रस और वायु कफ बलन वाले प्रकृति वाले को बड़ी इलायची सौंफ और तुलसी के पत्ते मात्रा से तुम्हें पानी में उबालकर छानकर ब्रह्म धातुन कराए। ब्रह्म धातुन करने से पूर्व रात्रि में तथा ब्रह्म धातुन करने के बाद अल्पाहार दलिया खिचड़ी या दूध आदि योगाचार्य की अनुमति से लें। ब्रह्म धातुन के लाभ क्या है? अमाशय की शुद्धि हो जाने पर उदर की समस्त नस नाड़ियां सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। आंखों के लिए अति उत्तम लाभ प्रसादन है, गैस को समूल नष्ट करता है। जिगर व तिल्ली पूर्ण रूपों से शुद्ध होकर अपना कार्य करते रहते हैं। रक्त की शुद्धि होती है, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, कब्ज और बद्ध कोष्ठता को तोड़ता है। इसके करने से मन एवं विचार स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। योगाभ्यासी के लिए अत्युत्तम साधन है। ब्रह्म धातुन कराने से पहले साधक के रोग का निदान करें। दिल, दिमाग, बड़ी आंत, फेफड़ों के रोग, अपेंडिसाइटिस, पेट में कीड़ा व रसोली एवं कैंसर आदि में ब्रह्म धातुन करना निश्चित है। ऐसे रोगियों के अतिरिक्त साधारण जनों को प्रथम सूक्ष्म योग क्रियाएं कराएं। योग्यता के होने पर ब्रह्म धातुन करा सकते हैं। त्राटक एकांत स्वच्छ स्थान पर कंबल बिछा लें, पद्मासन या साधारण आसन लगाकर बैठ जाएं। 1.5 मीटर की दूरी पर आंखों के सामने तेल सरसों का जलता दीपक रख लिया जाए या 45 सेंटीमीटर चौड़े या 60 सेंटीमीटर लंबे श्वेत कागज पर रुपये के सिक्के के बराबर काला गोला निशान लगाकर सामने दीवार पर लगा दिया जाए। एकटक बिना आंख झपके देखे जाए। आंसू निकलते ही आंखें मूंद कर भीतर मस्तक में ध्यान उतने मिनट लगाएं जितना आपके दीपक की लो को देखा था। ऐसे नित्य प्रति बीच में आंखों को विश्राम देते हुए 3 बार अभ्यास करें। अभ्यास काल में साधक को नासिका द्वारा पर्याप्त मात्रा में घृत या दूध का सेवन करना और इसी प्रकार खान पान में सावधानी रखना परम आवश्यक है। मैदानी इलाकों में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शरद ऋतु में त्राटक शीघ्र सिद्ध हो जाता है। दृष्टि के साथ मन का घनिष्ठ संबंध है। दृष्टि टिकते ही मन टिक जाएगा और मन की एकाग्रता ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त साधक के साथ दिव्य अलौकिक घटना भी घटित होनी शुरू हो जाती है। 3-4 घंटे का अभ्यास हो जाने पर शांभवी मुद्रा अपने आप सतगुरु कृपा से सिद्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप साधक समाधि अथवा उसका अवस्था का लाभ करता है। भगवान शिव इस मुद्रा द्वारा ही सदाशिव कहलाते हैं। यह त्राटक अथवा शांभवी मुद्रा आंखों के लिए तो चमत्कारी प्रभाव रखती है।